नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साथ में उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने पत्रों को हम तक पहुँचाते हैं। जो आशीषें उन्हें मिलती है उन्हें हमें बताते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से नहमिया की नई पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में नहमिया की पुस्तक से आगे के अध्ययन को देखेंगे। नहमिया को जब समाचार मिला कि स्वदेश लौटे इसराइलियों की आत्मिक दशा अति दयनीय थी, तब उसने प्रार्थना में पाप क्षमा मांगी। मित्रों, इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से हर एक को अपनी अनुग्रह प्रदान करें ताकि आपके जीवित वचन को हम सुन करके समझ सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, परेशान हैं, बीमार हैं या तकलीफ में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें ताकि वे भी अपने जीवन में आपके उन महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम अपने अध्ययन में नहमिया की पुस्तक से अध्ययन करेंगे और पिछले अध्ययन में जैसे हमने देखा कि नहमिया जो एक सरकारी कर्मचारी था, उसने अपने लोगों के बारे में सुना कि उसके लोग स्वदेश लौट गए हैं लेकिन उनकी दशा वहां अच्छी नहीं है। तब उसने प्रार्थना में अपने लोगों के लिए पाप क्षमा मांगी। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नहमिया एक अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। इस पद में प्रकट होता है कि नहमिया परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता था, वह उस पर आश्रित था, वह परमेश्वर का वचन जानता भी था, अतः परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन पर वह चिंतित हो उठा था। तब हम आगे पढ़ते हैं नहमिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। ध्यान दीजिए, नहमिया परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था और वह यहूदियों के स्वदेश लौटने पर भी विश्वास करता था। आज बहुत से प्रचारक विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर अयाजकीय मनुष्यों को काम में लेता है। जी हाँ, परमेश्वर का सत्य प्रचारकों को सदैव भेदता नहीं है, परंतु वह कभी कभी अयाजकीय मनुष्य तक पहुंच पाता है। आइए पढ़ें नहमिया 1 अध्याय के 9 पद में, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ध्यान दीजिए, नहमिया ने परमेश्वर से कहा, तूने कहा है कि तू विश्वासघात करने वालों को देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, परंतु यदि हम तेरी ओर फिरेंगे और तेरी आज्ञाओं को मानेंगे और उन पर चलेंगे, तो तू आकाश की छोर से भी हमें इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाएगा जो तूने अपने नाम में या अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। नहमिया को विश्वास था कि यहूदी स्वदेश लौटेंगे। वह उस प्रतिज्ञा पर निर्भर करके ऐसी प्रार्थना करता है। नहमिया 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का पियाऊ था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमिया चाहता था कि परमेश्वर उसे अपने काम में ले, परंतु वह परमेश्वर के समय से पूर्व कुछ नहीं करना चाहता था। वह इस विषय में प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा, यदि तू मुझे काम में लेना चाहता है तो मैं यहाँ हूँ। नहमिया राजा को उस पुरुष कहकर संबोधित करता है। हम देखेंगे कि वह राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगता है, और नहमिया परमेश्वर के समय से पूर्व चलना नहीं चाहता था, अतः वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे नहमिया का यरूशलेम आगमन, यरूशलेम प्रस्थान की नहमिया की विनती। इस अध्याय में हम देखेंगे कि नहमिया यरूशलेम जाने के लिए राजा से अनुमति मांगता है, और वह यरूशलेम नगर के खंडहरों को देखता है और इसराइलियों से निवेदन करता है कि शहर पनाह का पुनः निर्माण करे। नहमिया 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अर्तशत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। स्मरण रखें कि इस समय से दानियल के 70 सप्ताह आरंभ होते हैं। अर्थशत्र राजा के 20वें वर्ष में भविष्यवाणी में यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। हम देखेंगे कि नहमिया एक प्रसन्न चित्त मनुष्य था। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे परिचय पाकर प्रसन्न हो जाता। वह एक ऐसा अयाजकीय मनुष्य है जिसके साथ संबंध बनाने की आपकी हार्दिक इच्छा हो। उसकी नौकरी सरकारी थी, वह राजा का पिलाने हारा था, उसका उत्तरदायित्व था कि वह राजा को दिया जाने वाला भोजन और पेय पदार्थ को चखे। उदाहरण स्वरूप, यदि राजा के लिए मदिरा परोसी जा रही है तो वह पहले उसे चखेगा। यदि उस पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े तो वह मदिरा राजा को दी जाएगी और वह उसे पिएगा। अतः हम देखते हैं कि उसका कार्य भी संकटपूर्ण था। मेरे प्रियो, पिलाने हारे या पिलाने हारा होने के कारण नहमिया को अधिकांश समय राजा की उपस्थिति में रहना पड़ता था। अतः स्वाभाविक था कि वह राजा का मित्र बन जाए। मेरे विचार में कई बार ऐसा होता भी है या होता भी होगा कि राजा निर्णय लेने में अपने पिलाने हारे से परामर्श करे। तेरे विचार में यह क्या है? इस प्रकार वह राजा का परामर्शदाता अर्थात उसके मंत्रालय का एक सदस्य था। संभवतः अपनी नौकरी के कारण उसे दासत्व के देश में रुकना पड़ा। उसके मन में यह आशा थी कि एक दिन वह अपने पद का लाभ अवश्य उठाकर अपने लोगों की सहायता करने योग्य होगा। यही कारण था कि उसने अपने जाति भाई से पूछा था कि यरूशलेम का क्या हाल है। कई बार हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। जब हम अच्छे स्थानों पर होते हैं अपने प्रियों को भूल जाते हैं, लेकिन नहमिया इसे नहीं भूलता। नहमिया राजा से निवेदन करना चाहता है, परंतु अभी वह स्वयं को पूरी तरह तैयार नहीं पाता है। उस दिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि उसने यरूशलेम में लौटे यहूदियों का दुखद समाचार सुना था। वह उपवास रखकर विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा था। मेरे विचार में उसकी आंखें लाल थी और वह सामान्य दशा में दिखाई नहीं दे रहा था। प्रतिदिन की नाई वह प्रसन्न दिखाई देने वाला व्यक्ति उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पूर्व वह दुखी कभी नहीं देखा गया था। सामान्यतः वह प्रसन्न चित्त एवं उल्लासित दिखाई देने वाला था, इसलिए राजा ने तुरंत देखा कि आज वह कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। तब हम पढ़ते हैं नहमिया 2:2 में, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मित्रों, ध्यान दीजिए, नहमिया को अपनी भावनाओं के प्रकट हो जाने का बोध नहीं था। उसने प्रयास तो बहुत किया, परंतु सच्चाई छिपा नहीं पाया। अतः राजा ने सीधा प्रश्न पूछा, तू दुखी क्यों है? शरीर से तो तू चुस्त है, अतः तेरे दिल का कोई दुख है, कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है। मुझे बता कि वह क्या बात है। राजा के पूछने पर नहमिया बहुत डर गया। तब हम आगे पढ़ते हैं नहमिया 2:3 में, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? नहमिया ने कहा, राजा सदा जीवित रहे। पिलाने हारा मन से यह कह सकता था, क्योंकि वह राजा का खाना पीना परोसे जाने से पूर्व स्वयं चखता था। उसकी मनोकामना यही थी कि राजा हृष्ट पुष्ट रहे और वह स्वयं भी रहे। तब उसके मुंह से निकल भी गया, वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? नहमिया 2:4 में आगे हम पढ़ते हैं, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यह पहला पद है जिसमें तब पहली बार आया है। यहाँ पर शब्द तब पहली बार आया है, यह 32 आया है। नहमिया इस एक शब्द के द्वारा निरर्थक सुंदर शब्दों और राजा से संबंधित शिष्टाचार आदि को अनदेखा करता है। आप देखेंगे कि वह सीधा सीधा काम की बात करता है, वह व्यर्थ की बातें नहीं करता है। वह कहता है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके। जी हाँ, राजा की उपस्थिति में दीन राजा ने नहमिया से कहा, स्पष्ट है कि तू कुछ निवेदन करना चाहता है, तू मुझसे क्या चाहता है? अतः नहमिया ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। निसंदेह वह एक छोटी सी प्रार्थना होगी। मेरे विचार में उसने कहा, हे प्रभु, सही शब्दों के प्रयोग में मेरी सहायता कर, मैं बड़ी असमंजस में हूँ। तब हम देखते हैं नहमिया 2:5 में लिखा हुआ है, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। नहमिया ने राजा से विनती की कि उसे अवकाश प्रदान किया जाए कि वह यरूशलेम जाकर उसके पुनः निर्माण में सहायता करे। तब हम पढ़ते हैं नहमिया 2:6 में, तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। ध्यान दीजिए, जिसके पास रानी भी बैठी थी। इस वाक्यांश का उद्देश्य यह है कि दरबार में कभी कभी चर्चाएं नीरस हो जाती थी और राजा छोटी छोटी बातों में व्यस्त हो जाता था, वाद विवाद में बहुत समय लग जाता था। ऐसे में रानी पिलाने हारे के साथ अन्य बातें करने लगती थी। नहमिया युवा था और निश्चय रूपवान था। रानी ने पूछा होगा, नहमिया शनिवार और रविवार तुम कहाँ रहे? नहमिया ने कहा होगा, शनिवार मैं आराधनालय में गया था और रविवार फरात नदी में तैरने गया था, मैंने वह मछली भी पकड़ी। अति संभव है कि रानी और नहमिया के मध्य ऐसी अनेक बातें होती रही होंगी। प्रियो, जब नहमिया ने राजा से स्वदेश जाने की याचना की, तब रानी ने कान में कहा होगा कि उसे जाने दिया जाए। राजा ने कुछ पल सोचकर पूछा, तेरी यात्रा में कितना समय लगेगा? राजा ने शायद यह भी कहा होगा, नहमिया यह व्यवस्था का समय है और तेरे बिना हमें परेशानी होगी, मैं नहीं जानता कि तुझे छुट्टी दें या ना दें। उस समय रानी ने राजा के कान में कहा होगा, उसे जाने दीजिए। अंततः राजा ने पूछा, तुझे कितना समय लगेगा और तू कब लौटेगा? प्रकट है कि राजा उसे बहुत पसंद करता था और चाहता था कि वह लौट आए। नहमिया यहाँ विस्तृत वर्णन कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं करता है। वह बस इतना ही कहता है, मैंने उसके लिए समय नियुक्त किया। जी हाँ, आज बहुत अधिक व्यर्थ की बातें की जाती है। एक बार मैं एक वकील द्वारा किसी सरकारी मुद्दे पर चर्चा सुन रहा था। उसने 15 मिनट भाषण दिया और उसका भाषण सच पूछे तो केवल 2 वाक्यों में था, क्योंकि वह टीवी पर था, इसलिए उसने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बहुत शब्दों का उपयोग किया। नहमिया व्यर्थ की बातें किए बिना सीधे मुद्दे की बातें करता है। हम पढ़ते हैं नहमिया 2:7 में, फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। ध्यान दीजिए, नहमिया को यह बोध हुआ कि उसकी यात्रा संकटपूर्ण क्षेत्रों में से होकर है, अतः आसान नहीं होगी। अतः उसने राजा से निवेदन किया कि उसे मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के अधिपतियों के लिए एक पत्र दिया जाए कि उसे यात्रा में सुरक्षा प्रदान की जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं नहमिया 2:8 में लिखा है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नहमिया परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परंतु प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण उसने राजा से मार्ग में सुरक्षा हेतु राजा से पत्र लेने में संकोच नहीं किया। जी हाँ, नहमिया यरूशलेम का निरीक्षण करता है। आइए हम पढ़ें नहमिया 2:9 में लिखा हुआ है, तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। ध्यान दीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि फारस की आधी सेना नहमिया की यात्रा में उसके साथ थी। परमेश्वर ने राजा का मन नहमिया के लिए खोल दिया था और वह जानता था कि नहमिया पर परमेश्वर का हाथ है, वह अपनी यात्रा में सुरक्षित रहा। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि एज्रा ने भी राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी थी, परंतु उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा था कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसकी सुधि लेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। अतः वह सहायता मांगने से लजा रहा था, वह संकोच कर रहा था कि राजा कहेगा, क्या तुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? दूसरी ओर नहमिया के विचार में सुरक्षा की याचना करना उसका सेवा संबंधित अधिकार था। मेरे मित्रों, परमेश्वर हम सब की अगुवाई एक सी नहीं करता है। उसने एज्रा को एक मार्ग दिखाया और नहेमिया को दूसरा मार्ग दिखाया। वह आपको एक मार्ग से लेकर चलेगा और मुझे दूसरे मार्ग से। मैंने अपनी सेवा के आरंभ में एक भूल की। मैंने परमेश्वर के एक महान जन की नकल करने का प्रयास किया, क्योंकि वह सफलता की सीमा पर था। एक दिन मेरी कलीसिया में एक धर्म वृद्ध ने, जो मुझे 14 वर्ष की आयु से जानता था, मुझसे कहा, भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करें। मैं उसके साथ में गया। वह वहाँ का अध्यक्ष था। वहाँ उसने मुझसे कहा, देखो हमें एक वास्तविक व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं जो किसी की नकल करता है। उसे बस यही कहना था और आवश्यक भी इतना ही था। उस दिन से आज तक मैंने किसी की नकल नहीं की है। परमेश्वर दया करे उस मनुष्य पर जो मेरी नकल करने का प्रयास करे। यह कैसी त्रासदी है कि एक मनुष्य दूसरे की नकल करता है। परमेश्वर हम सब की एक सी अगुवाई नहीं करता है। एज्रा किसी प्रकार के राजसी सहयोग के बिना स्वदेश लौटा था। जी हाँ, नहेमिया के साथ लगभग आधी फारसी सेना थी जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किए थे। परमेश्वर दोनों ही विधियों को काम में लेता है। नहेमिया 2:10 में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरेनी संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी थे, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब नहेमिया यरूशलेम पहुंचा तो वहां पहले से ही विरोध व्याप्त था। यहां हम 3 मनुष्यों से भेंट करेंगे, होरेनी संबलत अरबी गेशेम और अम्मोनी तोबियाह। ये 3 पुरुष परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के बैरी थे। उन्होंने मंदिर के पुनः निर्माण में बाधा डाली थी और अब वे शहरपनाह के पुनः निर्माण में रुकावट डालना चाहते थे। अब जब नहेमिया सेवकों और सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो उस क्षेत्र में सबको इसकी सूचना मिली। वे जानना चाहते थे कि वह कौन है। उन्हें बताया गया कि वह राजा का पिलाने हारा है और यहूदियों की सहायता हेतु आया है। यह सुनकर बैरियों का दिल बैठ गया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। यह जानना बड़ा रुचिकर होता है कि समाचार कैसे ग्रहण किया जाता है। जी हाँ, समाचार का अच्छा या बुरा होना आप पर निर्भर करता है कि वह अच्छा है या बुरा है। सुसमाचार उसके वैरियों के लिए बुरा है। सच तो यह है कि वह शुभ संदेश की अपेक्षा उनके लिए सब कुछ है। नहेमिया 2:11 में हम पढ़ते हैं, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। ध्यान दे, इस पद में तब शब्द फिर आया है। इस संदर्भ में नहेमिया अपनी यात्रा और रोमांचकारी अनुभवों के बारे में 2 या 3 अध्याय लिख सकता था, परंतु वह बस इतना ही कहता है, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब। इसे लिख दीजिए कि वह तब शब्द का प्रयोग करके व्यर्थ बातों को कम कर रहा है। नहेमिया 2:12 में हम पढ़ते हैं, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। यरूशलेम पहुंचकर नहेमिया अनावश्यक चिंता का कारण नहीं बनना चाहता था, अतः वह रात के अंधेरे में शहरपनाह का निरीक्षण करने निकलता है। उसने साथ में सेवक नहीं लिए थे। वह प्रदर्शन नहीं चाहता था। वह एक आयाजकीय मनुष्य था। यह एक व्यापारी की रीति है। हम पढ़ते हैं नहेमिया 2:13-14 में लिखा हुआ है, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। ध्यान दीजिए, वहां इतना अधिक मलबा था कि नहेमिया के घोड़े को आगे जाना मुश्किल था, अतः वह घोड़े पर से उतर पड़ा। तब हम पढ़ते हैं नहेमिया 2:15 में, तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। नहेमिया ने संपूर्ण नगर का चक्कर काट लिया था। उसकी निरीक्षण का जो कार्य था वह पूरा हुआ। तब हम पढ़ते हैं नहमिया 2:16 में, हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याचकों को और न रईसों और न हकीमों और न दूसरे काम करने वालों को। मेरे मित्रों, नहमिया ने परमेश्वर के कार्य में सावधानी और उचित विवेक का काम में लिया। आज के कुछ अयाजकीय मनुष्य द्वारा परमेश्वर के काम देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। हमारे रेडियो कार्यक्रम के मंडल सदस्य मेरे लिए प्रोत्साहन का कारण है। मैं व्यापारी नहीं हूँ और स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। मेरे इन सहयोगियों का काम प्रशंसनीय है। जब वे कुछ विषयों पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं, तब मैं चुप बैठकर उनकी बातों को सुनता हूँ। यदा कदा उनमें से कोई मुझे भोजन के लिए भी ले जाता है और कहता है, देखिए हमारे रेडियो कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है, और जो बात वह कहता है मेरे मस्तिष्क में पहले कभी नहीं आई थी। जी हाँ, अब नहमिया मुझ में कौतूहल जगाता है और मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमिया के जीवन को कि परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से उसे प्रयोग में लिया। यहाँ उसने किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी कि वह क्या करने जा रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने उसके मन में डाला, उसने बड़े अच्छे विवेक के साथ काम में लिया, ताकि वह अपने कार्य को सफल बना सके। मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि को इस्तेमाल में लाना चाहिए, और हम इसकी उसकी सलाह लेकर गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। आइए आज हम नहमिया के जीवन के द्वारा अपने जीवन में सीखें और कहें, प्रभु आप मुझे सही विवेक दें ताकि मैं सही रीति से आपके कार्यों को कर सकूं। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ को प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजाओं का